Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 6, Text Number 13 and 14. Bhagavan Sri Krishna ke mukhavind se nikle hue in amrit mahi shabdo ko mere saath saath padhne ka priyas kijiye. Bhagavan kehte hain, Sanam kaya shiro grivam dharayanna Chalam sthiraha Samprikshanasika gramsvam Deshashchana valokayam Prashantasma vigatabhi Brahmachari pratisthitaha Manah sayamyamat Chitto Yukta Asita Mataraha Samam Kaya Shiro Grivam Dharayanna Chalam Stiraha Samprikshanasika Gramsvam Dishashana Valokayam Prashantasma Vigatabhi Brahmachari Pratisthitaha Manah Sayamyamachitto Yukta Asita Mataraha Samah Kaya Shiro Grivam Dharayanna Chalam Stiraha Samprikshanasika Gramsvam Deshashchana Valokayam Prashatatma Vigatabhi Brahmachari Pratisthitaha Manah sayamyamachitto Yukta asita mataraha Samam kaya shiro krivam Dharayanna chalam stiraha Samprikshanasika gramsvam Dishashchana valokayam Prashantatma vigatabhi Brahmachari pratisthitaha Manah sayamyamachitto Yukta asita mataraha शब्दों का अर्थ समम अर्थात सीधा काय मन शरीर शिर मन सिर ग्रीवम तथा गर्दन धारयन रखते हुए अचलम मतलब हिलना नहीं है बिल्कुल अचल स्थिर शांत संप्रेक्ष्य देखकर नासिका के अग्रम यानी अग्रभाग की ओर स्वम यानी अपनी दिशा अर्थात दिशा च भी अवलोकयन अर्थात न देखते हुए प्रशांत अविचलित आत्मा यानी मन विगत भी भय से रहित ब्रह्मचारी व्रत यानी ब्रह्मचारी व्रत में स्थित यानी स्थित मन संयम यानी मन को पूर्णतया दमन करके मत पर मत चित्त यानी भगवान कहते हैं मत मुझ में चित्त अपने चित्त को केंद्रित करते हुए युक्त आसी तमत पर युक्त मतलब वास्तविक योगी जो वास्तव में योग में स्थित होता है आसीत बैठे मत पर मत मना मुझ में पर मतलब चरम लक्ष्य अनुवाद भगवान बता रहे हैं कि योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने सिर अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाग के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुजी परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इस अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश स्वरूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में जाता रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि के से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। अर्थात सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचर्य बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति व्यवहारिक विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ऐसे संयमशील ग्रस्त ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचर्य को संयमित मैथुन की अनुमति होती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। श्रीमद् भगवद गीता 2.59 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः രസവർഷം രസൂപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ട്വാ വിനിവർത്തതി. अर्थात जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए भाग भी किया जाता है, वहीं भागवत भक्त भागवत रसास्वादन के कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है. भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता. विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता. बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है. भागवतम का 11.2.36 कथन है, भयम द्वितीया भिनि वेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यत यो स्मृति ही. अर्थात कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है. और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ रहता है. यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग सिद्धियों से भिन्न है. श्रील प्रभुपाद की जय हो. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीक कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते. सप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वंचा कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത മാത കീ ജയ. ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ യോഗ അഭ്യാസ കാ പ്രാക്ടിക്കൽ അഭ്യാസ ബതാ രഹേ ഹൈ കിസ് തരഹ സേ കർനാ സഹീ യോഗ അഭ്യാസ ഔർ ഉസ്കാ ക്യാ ലക്ഷ്യ ഹൈ. ഔർ കൽ ഹംനെ ശ്ലോക നമ്പർ 11 ഔർ 12 മേ പഢാ. ഭഗവാൻ നെ കഹാ ശുചോദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മന. അച്ഛി സ്വച്ഛ ജഗാ പേ ജാനാ ഹൈ ഔർ വഹാ പേ ജാകർ एक आसन के ऊपर बैठना है. पवित्र जगह होनी चाहिए और आसन पे बैठना चाहिए. और कैसी किस तरह का आसन हो, ना त्रिचुत्रम ना तिनीचम शैलाज न कुशोत्तम. इतना ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि बैठने में आप कंफर्टली बैठकर उसके ऊपर ध्यान कर सको. जैसे मृगछाला होनी चाहिए ताकि कीड़े मकोड़े भी दूर हों उससे. और उसके बाद क्या करना है, उस पर बैठ कर तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया. आपकी मन की, आपकी चित्त की और इंद्रिय की क्रियाओं को एकाग्र करना है. अब वो किस पर एकाग्र करना है वो आज बताएंगे, लेकिन कल भगवान ने कहा उन सबको एकाग्र करना है. उपवेश्यासने युंस्यात् योगमात्म विशुद्धये. इस तरह से जब आप इस आसन पर बैठ जाओगे, स्थिर हो जाओगे, हृदय को शुद्ध करने से यानी कि आत्म विशुद्धये, इससे आपका हृदय शुद्ध होगा. और उसके बाद क्या होगा, हृदय शुद्ध. अब देखो हृदय गंदा होगा तो हृदय के अंदर बैठा हुआ परमात्मा दिखेगा नहीं ना, तो उसको शुद्ध करने के लिए विधि है. और फिर उसके बाद क्या करना है आज बता रहे हैं. समम काय श्रोग्रीवम. समम मतलब एकदम सीधा होना चाहिए. क्या सीधा होना चाहिए, काय. काय किसको बोलते हैं, जैसे वैसे तो शरीर को भी काय बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, जैसे हाथ और पांव को निकाल कर ये जो हमारा धड़ है ना, हाँ धड़ को बोलते हैं काय. और शिर यानी सिर और गर्दन यानी कि ग्रीवम यानी गर्दन, सिर गर्दन और ये जो धड़ है ना उसको सीधा सीधा एक सीध में उसको खड़ा करना है. और आगे भगवान कहते हैं धारयन अचलम स्थिरम. उसको एक तो सीधा करना है, सीधा सीधा आप प्रैक्टिस करो, ऐसे खड़े बैठो सीधा सीधा. और उसके बाद आपको हिलना भी नहीं, अचलम एकदम स्टॉप रहना है. भगवान बता रहे हैं अभी हम लोग को ऐसा सोचना है कैसे हम लोग कर सकते हैं. उसके बाद भगवान कह रहे हैं संप्रेक्षणासिकाग्रम सुम दिशस्यान वलोकयन. संप्रेक्ष नासिकाग्रम सुम यानी अपनी जो नाक है ना उसका जो अग्रभाग है, ये जो नाक का टॉप पॉइंट होता है ना उस पर क्या करना है, संप्रेक्ष उसको देखना है. बस अपनी नाक के टॉप को देखना है और दिशेशान अवलोकन अपनी नजर को इधर उधर नहीं लगाना है, बस इधर ही देखना है. पहले क्या बोला, समम काय शिरोग्रीवम, अपने काया को अपने सिर को अपने गर्दन को सीधा खड़ा करना है. धारयन नचलम स्थिर और उसको एकदम सीधा रखना है और हिलना नहीं है, मूव नहीं करना है. संप्रेक्षणासिकाग्रम सुम अपनी नाक के टॉप को देखना है और दिशेशाना अवलोकन अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं घुमाना है, बस उधर ही देखना है. ठीक है. उसके बाद बोला प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचर्य वितस्थित. प्रशांत आत्मा, प्रशांत यानी एकदम शांत अपनी आत्मा को किसी के बारे में भी मतलब ऐसे विचलित नहीं करना है. कोई चीज विचलित करिए ना एकदम शांत. और विगत भी, विगत में मतलब भय से आपको मुक्ति. अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि देखो अगर किसी को भय होता है, जैसे भय तो है वो कैसे होता है पता है, हमारे पिछले कर्मों के अनुसार कोई कोई वस्तुएं जो है वो हमें इंटरनली भय देती है. जैसे किसी को अंधेरे से भय लगता है, किसी को अग्नि से भय लगता है, किसी को ऊंचाई से भय लगता है. तो एक मेरी फ्रेंड है ना, उसको पता है किससे भय लगता था, छोटी होती थी जब हम लोग, तो जो गुड़िया के बाल होते ना जो अक्सर बारबी डॉल के बाल होते हैं वो उसको दिखाते थे ना, डर लगता था उससे बहुत। बस ऐसे ही किसी किसी को डर लग जाता है ना हर चीज से। लेकिन भगवान कहते विगत अभी, अब भय लगता है तो लगता है उससे। अब चलो ये तो हम कर सकते हैं, जगह पे जाके सीधा बैठ जाए, इधर उधर नहीं देखे, लेकिन हृदय के अंदर भय है तो उसका क्या करें। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि विगत भी यानी पूर्ण कृष्ण भावना में हुए बिना निर्भय नहीं कोई भी हो सकता। अब देखो भय आपको तब लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अब आपको अगर कोई बहुत सारा सिक्योरिटी मिल जाती है ना फिर भय नहीं लगता। और जब हम भगवान भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो हम हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रियलाइज करते हैं। ऐसा तो लगता है कृष्ण मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे साथ है और मेरी रक्षा करेगा। तो जब हम कृष्ण के ऊपर विश्वास रखते हैं, जब कृष्ण के ऊपर श्रद्धा होती है फिर भय नहीं रहता, फिर कोई भी भय नहीं रहता। और भय तब तक रहता है जब तक हमको ये लगता है कि नहीं कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो ये विस्मृति है हमारे, यही शाश्वत हमारे बंधन का कारण होता है कि हम भगवान के साथ अपनी अपने संबंध को भूल गए हैं। तो जब कृष्ण के साथ संबंध जुड़ जाएगा फिर कोई भय नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वास्तव में अभी आगे हम पढ़ेंगे, वास्तव में ये योग अभ्यास केवल एक भक्त ही कर सकता है। सबसे पहले अभी उसको क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना है, एक का ना फोकस करना है और अपने भय को छोड़ना। और आगे आगे जो ये थर्ड लाइन है ना उसको गौर से पढ़ना है आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित, कि आपको ब्रह्मचारी में रहना है। ब्रह्मचारी का क्या मतलब है वो हमने यहाँ पे पढ़ा, याज्ञवल्क मुनि ने बताया क्या है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम् प्रचक्षते, कि हर काल में हर स्थान में मनसा वाचा कर्मणा अगर कोई मैथुन भोग को पूर्णतया त्यागता है तो वह ब्रह्मचारी, केवल वही योग कर सकता है जो ऐसा करता है। अब इसका मतलब है कि फिर गृहस्थ लोग है ना योग नहीं कर सकते, है ना। कोई भी योग है ये तो है ना अष्टांग योग बताया जा रहा है ना, लेकिन कोई भी योग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं होते हो, ना भक्ति योग ना ज्ञान योग ना ही ध्यान योग। लेकिन भक्ति योग में ब्रह्मचर्य की परिभाषा बदल जाती है। परिभाषा क्या हो जाती है कि आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त और किसी के साथ संबंध नहीं रखोगे, इलिसिट सेक्स। तो अगर आप केवल अपनी पत्नी के साथ संबंध रखते हो तो भगवान बताते हैं कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत अर्चवा, कि अगर अधर्म के विरुद्ध काम इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हो तो वो मेरा स्वरूप है, भगवान ने इतना पवित्र बताया उसको। तो अगर कोई भक्त, इसका मतलब है केवल एक भक्त। अब यहाँ पर संसार में क्या बताते हैं कि ये योगा जो है ना एक फैशन हो गया है, है ना। योग किसे करते हैं, शरीर को आकर्षण बनाने के लिए। यहाँ तक कि योगा को, योगा की एक ब्रांच है उसमें क्या लिखा जाता है, योगा फॉर सेक्स, कि आप ऐसे योगा करो कि आप है ना और भी अच्छे तीव्रता के साथ अपने सेक्सुअल इंद्रियों को संतुष्ट कर सको। परंतु योगा के द्वारा शरीर को स्वस्थ करने की ये प्रक्रिया क्यों की जाती है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप आध्यात्मिकता में उन्नति कर सको। इसलिए नहीं कि शरीर को स्वस्थ करके शारीरिक भोग के लिए योग किया जाए, इसलिए योगा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ भगवान ने बताया है कि ब्रह्मचर्य व्रत स्थित, कि योग का मतलब है आप ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ। और योग इसलिए नहीं है कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ। और आगे वाली लाइन जो है उसमें भगवान ने अत्यंत ही सुंदर शब्द उच्चारण किए हैं, मन संयम्य मच्चित्तो। देखो ध्यान करना है, मन को संयमित रखना है, मन में किसी और के विषय में नहीं सोचना है, मच्चित्तो फोकस करना है किस पर, मत, मत माने मुझे, मेरे मेरे ऊपर ही फोकस करना है। अब यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, देखो योग में क्या किसको लक्ष्य बनाया जाता है, विष्णु और हाँ अंतर्यामी जो परमात्मा होता है ना उसको लक्ष्य बनाना है। तो भगवान साफ बता रहे हैं अर्जुन को कि वो परमात्मा कोई और नहीं है, मैं हूँ, मेरा ही एक अंश है परमात्मा, तो आपको उसमें ही ध्यान लगाना है। तो भक्त कैसे ध्यान लगाता है, मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का सेवक को पूरा ध्यान लगा होता है। और दूसरा तो यहाँ तक बता दिया ब्रह्मचर्य के विषय में श्री प्रभुपाद ने कि भक्त को भगवान से इतना प्रेम हो जाता है और रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते कि जब वो भगवान से प्रेम करना शुरू कर देता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तो फिर उसको शारीरिक संतुष्टि की इच्छा खत्म हो जाती है। ये सेक्सुअल इच्छाएं ना स्वतः खत्म हो जाती है। उसका दिल केवल ये करता है मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, अपनी इंद्र तृप्ति से उसको खींच आने लगती है। जैसे हमने पढ़ा था ना नव नव रस जब यदवधि कृष्ण पाद पदारविंद, जब से मैंने कृष्ण के चरणों के आकर्षण को अपने हृदय के अंदर रियलाइज किया है तब से भौतिक वस्तुएं तो मुझे बिल्कुल गंदी लगने लगी हैं और कृष्ण के प्रेम में हर एक क्षण में नया नया रस आस्वादन करता हूँ। और इस तरह से भक्त जो है वो परम योगी होता है क्योंकि उसका आकर्षण केवल कृष्ण में होता है। और यहाँ पर क्या बताया, मन संयम या मत चित्तो, हम तात्पर्य को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है कि हर एक श्लोक को भक्ति में डाइवर्ट करके, यहाँ पर भक्ति की कोई बात ही नहीं, क्या बात नहीं, ये भक्ति नहीं, भगवान ने कहा मन संयम या मत चित्तो, अपना ध्यान मुझ में केंद्रित करो, ये भक्ति नहीं है। लेकिन है ना सब कोई अपने अपने तरीके से योग को है ना बताते हैं। यहाँ तक कि योग के विषय में ये भी कहते हैं कि योगा के इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं जिसके कारण है ना हर किसी के को योगा करना चाहिए। जो एथिस्ट होते हैं ना, जो नास्तिक, उनको भी योगा का लाभ लेना चाहिए। तो फिर योगा की एक ब्रांच है योगा फॉर एथिस्ट, यानी एनलाइजमेंट विदाउट गॉड। आप भगवान के ध्यान के अतिरिक्त आप योग नहीं कर सकते, परमात्मा के बिना मतलब परमात्मा पे ध्यान लगाए बिना योग जो है वो असंभव है। अब ध्यान दो तरह से लगाते हैं हम, भक्त लोग कैसे लगाते हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ तो भगवान के पास आध्यात्मिक लोक में जाकर भगवान की सेवा करनी है। और जो ब्रह्मवादी वो कैसे लगाते हैं, निराकारवादी कि मैं और भगवान एक ही है, मुझे भगवान में लीन हो जाना, तो वो क्या करते हैं, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। दोनों में परमात्मा पे ध्यान लगाना अत्यंत आवश्यक है और ध्यान लगाने से पहले उसे किस चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा और भक्ति की। यदि आपकी उसमें श्रद्धा ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है, तो आप ध्यान कैसे लगाओगे। तो भगवान कहते हैं मन संयम या मत चित्तो, उसके बाद भगवान बहुत सुंदर बोल रहे हैं युक्त आसीत मत तरह, यानी कि पूरा अपना जो ध्यान है युक्त रहना है। मतलब वास्तविक योगी जो होता है वो कैसे करता है, केवल मुझे ही मत परम, मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाता है। इसके योगी का चरम लक्ष्य कोई भौतिक सिद्धियां प्राप्त करना नहीं होता है, जैसे अणिमा लघिमा और ये दूसरी दूसरी जितनी सिद्धियां हैं, या शरीर को स्वस्थ करना या फिर और भौतिक कोई वस्तु को प्राप्त करना, ये थोड़े ना योग करने का वास्तविक लक्ष्य है। भगवान कहते हैं वास्तविक लक्ष्य क्या है, मैं हूँ, तो योग अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद जी ने साफ साफ बता दिया कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता है तब तक ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक भौतिक वस्तुओं में आकर्षण खत्म नहीं होगा, जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक आप ब्रह्मचर्य नहीं बन सकते, जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक मन विचलित रहेगा, मन संयम या मत चित्तो, जब तक आप कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करोगे तब तक आपका मन विचलित होता रहेगा, चित्त जो है वो कृष्ण के ऊपर भगवान के ऊपर फोकस कैसे होगा। और जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करोगे तब तक आप कैसे युक्त आसीत मत तरह भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओगे। तो श्री प्रभुपाद जी ने अंतम लक्ष्य बताया कि कृष्ण भावना भावित भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन करना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद ने बताया, यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है, कि जो आजकल योग समिति जैसे मैंने आपको बताया योगा फॉर सेक्स, योगा फॉर एथिक्स, ये सब नहीं है। वास्तविक योगा किस लिए है? भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, भगवान को अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाने के लिए और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए। और ये सब तभी हो सकता है जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? जब चित्त शुद्ध होगा। और चित्त शुद्ध कैसे होगा? जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं अच्छे तरीके से सेवा कर सकूं। हरे हरे।